रुद्राक्ष के आने पर रुद्री काफी खुश थी। वहीं रुद्राक्ष कमरे में पहुंचा तो ईशानी ब्लैंकेट में सिमटकर सोई हुई थी। उसे जगाने के लिए रुद्राक्ष ने ब्लैंकेट खींचा तो उसने देखा रात को ईशानी वैसे ही बिना कपड़ों के सो गई थी। उसने जल्दी से ईशानी को वापस ब्लैंकेट ओढ़ाया और ईशानी के बिखरे हुए कपड़े उठाने लगा। रुद्राक्ष ईशानी के पास आकर लेटा और जानबूझकर उसने अपना हाथ ईशानी के पेट पर घुमाने लगा। उसकी इस हरकत पर ईशानी की नींद टूट गई। वो रुद्राक्ष की तरफ पलटी। अचानक उसे अपने पास देखकर ईशानी ने उसे धकेलते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो आप? रात को तो आपको मुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। आप बाहर जाइए, मुझे ब्लैंकेट से बाहर निकलना है। और मैंने जाने से मना कर दिया तो? रुद्राक्ष ने भौंई उठाकर कहा। ठीक है, मत जाइए, मेरा क्या है, मैं पूरे दिन बिस्तर में लेटी रहूंगी, फिर आप सबको एक्सप्लेनेशन देते रहना, ईशानी ने बेपरवाही से कहा और फिर से ब्लैंकेट में सिमटकर सोने लगी। मैं क्यों किसी को एक्सप्लेनेशन दूं? अब अपनी वाइफ के साथ टाइम बिताने के लिए एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना देनी पड़ती है, रुद्राक्ष ने मुस्कुराकर कहा और वो ईशानी के पास ब्लैंकेट में आने लगा। रुद्राक्ष जानबूझकर ईशानी को तंग कर रहा था। उसने ईशानी को पूरी तरह अपनी बाहों में समेट लिया था। उसकी इस हरकत से ईशानी को गुस्सा भी बहुत आ रहा था, क्योंकि रात को उसने उसे फिर यही एहसास दिलाया कि उसे ईशानी के करीब नहीं आना है। ईशानी ने गुस्से में रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, प्रॉब्लम क्या है आपकी रुद्राक्ष खुराना? साथ में भी नहीं रहना है और दूर भी नहीं भेज रहे हो। एक बार सबके सामने स्टैंड तो लीजिए, बताइए सबको कि आप मुझसे प्यार करते हो, मैं आ जाऊंगी आपके साथ। अब तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है कि तुम मेरे पास वापस आ सको। ईशानी शर्मा, तुमने अपनी मर्जी से मुझे छोड़ा है तो तुम्हारे पास वापस आने का ऑप्शन नहीं है। वैसे ऐसा क्या कहा था उसने तुम्हें जो तुमने अपना स्टेटमेंट बदल दिया? रुद्राक्ष ने सख्त आवाज में पूछा। वो ईशानी के आसपास जरूर था, लेकिन कल ईशानी ने जो भी किया था वो उसे भूला नहीं था। ईशानी को अचानक ही मोक्ष की बातें याद आईं। एक पल के लिए रुद्राक्ष के साथ रहते हुए वो भूल गई थी कि उसे अपनी बहन को भी इंसाफ दिलाना था। सब याद आते ही अचानक ईशानी ने रुद्राक्ष को धकेलकर खुद से दूर किया और ब्लैंकेट लपेटकर उसके पास से खड़ी होकर बाथरूम में जाने लगी। कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। तुम नहीं, तुम दोनों मुझसे छुपा रहे हो और वो मैं पता लगाकर रहूंगा, रुद्राक्ष ने खुद से बड़बड़ाकर कहा। थोड़ी देर बाद ईशानी नहाकर बाहर आ गई थी। उसने बाथरूम को पहना हुआ था। उसने देखा रुद्राक्ष अभी भी वहीं पर है और उसी के आने का इंतजार कर रहा था। ईशानी ने इस बार उसे पूरी तरह इग्नोर किया और अपने लिए कपड़े निकाले। अब वो खुराना फैमिली में नहीं थी तो उस पर ये प्रेशर नहीं था कि उसे उनके हिसाब से कपड़े पहनने होंगे। ईशानी ने बैगी डेनिम पैंट्स और ऊपर क्रॉप टॉप पहना हुआ था जिसमें उसकी कमर का कुछ हिस्सा दिख रहा था। ईशानी ने अपने बालों को सेट किया और तैयार होकर वापस बाथरूम से बाहर निकली। उसे तैयार हुआ देखकर रुद्राक्ष ने पूछा, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? और मैं आपको क्यों बताऊं? आपने कहा ना कि मैं आपकी लाइफ से चली गई हूं, तो अब वापस आने का रास्ता बंद हो गया है। फिर यहां क्या कर रहे हैं आप? जाकर अपना काम देखें और मैं जो कर रही हूं वो मुझे करने दीजिए, ईशानी ने काफी रूडली जवाब दिया और फिर वहां से नीचे चली गई। रुद्राक्ष भी उसके पीछे आ गया था। रुद्राक्ष और ईशानी को देखते ही रुद्री ने कहा, अच्छा हुआ तुम तैयार होकर आ गई, चलो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आज का दिन कैसे स्पेंड करना है मैंने वो पूरा प्लान कर लिया था। मोक्ष भी वहीं पर था। उसने रुद्री को इंटरप्ट करते हुए कहा, सॉरी मॉम, लेकिन आज ईशानी मेरे साथ बाहर जा रही है। उसने ईशानी की तरफ देखकर कहा, अच्छा हुआ तुम तैयार हो गई, ब्रेकफास्ट हम बाहर कर लेंगे, वो हमारा वेट कर रहे हैं, वी हैव टू गो। ईशानी ने मोक्ष की बात पर हामी भरी और उसके साथ चली गई। उसने एक बार रुद्राक्ष की तरफ मुड़कर तक नहीं देखा और उसकी ये हरकतें रुद्राक्ष को गुस्सा दिला रही थी। उसने रुद्री के सामने रिएक्ट नहीं किया और ना ही वो उनके पीछे गया, लेकिन उसके दिल में भी ये जानने की उत्सुकता थी कि आखिर ईशानी और रुद्राक्ष अब करने के हवाले हैं। आज के लिए इतना ही। मोक्ष ईशानी को लेकर कहाँ जा रहा है? अगर फिर से ईशानी ने कुछ उल्टी सीधी हरकत की और रुद्राक्ष को गुस्सा आया तो सच में उस पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि रुद्राक्ष तो ऐसे ही उससे गुस्सा है। पाठ पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले पाठ पर। ओके, तो अपनी एक और कहानी का लिंक शेयर कर रही हूँ, आपको अननोन वाइफ ऑफ बिलियनेयर के नाम से मिल जाएगी। गोवा कोर्ट के मैरिज रजिस्ट्रेशन एरिया की एक सीट पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा हुआ था। उसने सामने की तरफ अजीब नजरों से देखा और फिर सख्ती से बोला, मिस सिंघानिया, क्या तुम नहीं जानती एक से ज्यादा बार शादी करना इलीगल होता है? अगर तुम्हें दूसरी शादी करनी है तो पहले तलाक लो और बाद में किसी और से शादी करना। बोलते हुए उसने अपने सामने खड़ी उस दुबली पतली सी लड़की को देखा और फिर उसके साथ खड़े लड़के को। लेकिन ये कैसे हो सकता है, मेरी पहले शादी नहीं हुई है, उसके सामने खड़ी लड़की ने घबराई आवाज में कहा। उसके ऐसा कहने पर उस आदमी ने उसे घूर कर देखा और फिर एक मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रिंट करके उसके हाथ में थमाते हुए कहा, अगर शादी नहीं हुई है तो तुम्हारी शादी पहले से रजिस्टर कैसे हो सकती है, इसे लो और अपने घर जाओ। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं जो पति को छोड़े बिना ही किसी और से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देने के साथ उसने उसको दो बातें अलग से सुना दी। उस लड़की ने मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिया और बाहर आ गई। वो लगभग 22 साल की थी। उसकी छोटी लाइट ग्रे आईज में निराशा के भाव थे। वो कुछ समझ पाते उससे पहले उसके साथ आई लड़की ने कहा, इशिका, अगर तुम पहले से शादीशुदा थी तो मुझे इस काम के लिए क्यों हायर किया? एक तो पहले ही मैं तुम्हारे साथ नकली शादी रजिस्टर करने के लिए पकड़ा जा सकता था, ऊपर से तुम पहले से शादीशुदा हो। देखो, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस नहीं देने वाला हूँ। उसका नाम इशिका था। इशिका ने उसे वहां से जाने का इशारा किया। फिर उसने गहरी सांस ली और अपने कमर से थोड़े ही छोटे हल्के भूरे बालों को रबर बैंड से बांध लिया था। इतनी परेशानी में भी वो लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही थी। 5 फुट 4 इंच हाइट, गोरा रंग, बराबर होंठ और होठों के नीचे राइट साइड थुड्डी से थोड़ा ऊपर एक दिल। उसने नॉर्मल पैंट और लूज टी शर्ट पहना था और टी शर्ट को पैंट के अंदर इन कर रखा था। वो भी इंतहा खूबसूरत लग रही थी। इशिका ने गहरी सांस ली और धीरे से मन ही मन कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी शादी पहले से रजिस्टर है? मेरा तो कभी कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं रहा जिसने बदला लेने के लिए मेरे साथ ऐसा किया हो। सोचते हुए उसने एक नज़र मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को देखा और फिर अपने हस्बैंड की फोटो को। वो एक ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट था, फिर भी लड़की की पर्सनैलिटी उस ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में भी छुप नहीं पा रही थी। गहरी काली आंखें, आंखों से थोड़ा नीचे एक दिल, परफेक्टली सेट किए हुए बाल, खूबसूरत नैन नक्श के साथ वो उस छोटी फोटो में भी अट्रैक्टिव लग रहा था। लड़की की फोटो देखने के बाद इशिका ने अपनी तस्वीर को देखा। वो उसी की फोटो थी, उसका तिल भी वहीं पर था। फिर इशिका उस पर लिखे अपने हस्बैंड के नाम को पढ़ते हुए धीरे से बोली, अभिमन्यु राजवंश। इशिका ने वापस उस लड़की की तस्वीर को गौर से देखा और फिर धीरे से कहा, मैं अपनी जिंदगी में काफी लोगों से मिल चुकी हूँ, लेकिन ना तो मैंने इसे देखा है और ना ही कभी इसका नाम सुना है। फिर हम दोनों की शादी कैसे रजिस्टर हो सकती है? सच का पता लगाने के लिए इशिका ने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की फोटो क्लिक की और किसी को भेजी। उसने साथ में मैसेज लिखा, जल्द से जल्द इसके बारे में पता लगाओ।
सामने से एक जवाब आने के बाद इशिका अपनी स्कूटी की तरफ गई और फिर वहां से कहीं जाने के लिए निकल गई। हालांकि वो अभी भी इस बात को लेकर हैरान थी कि अचानक उसकी शादी किसी अभिमन्यु राजवंश से कैसे रजिस्टर हो सकती थी जिसे वो जानती तक नहीं थी। वहां से इशिका गोवा के एक हाई क्लास एरिया में पहुंची। उसने अपनी स्कूटी एक विला के आगे रोकी और धीमी गति से चलते हुए अंदर जा रही थी। उसके बाहर बड़े बड़े शब्दों में सिंघानिया विला लिखा हुआ था। इशिका वहां काफी वक्त बाद आई थी और आने का कारण भी था। इशिका धीमे कदमों से अंदर की तरफ बढ़ रही थी, तभी उसे पीछे कुछ हाउस हेल्पर के धीरे से फुसफुसा कर बातें करने की आवाज सुनाई दी।
वो लड़की कौन है? ये तो आयशा बेबी से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है,
एक ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा। वो इशिका को काफी गौर से देख रहा था। इतने सिंपल कपड़े में भी वो बिल्कुल मासूम और किसी प्रिंसेस की तरह लग रही थी। उसकी बात सुनते ही दूसरे ने उसे डांटते हुए चुप कराते हुए कहा, धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो खामखा तुम्हें काम से निकाल देंगे। गलती से भी तुम्हारी बात आयशा मैडम के कान में नहीं जानी चाहिए।
लेकिन ये है कौन, ये तो बता दो,
उसने फिर से पूछा। दूसरे वाले हाउस हेल्पर ने गहरी सांस ली और जवाब में कहा, तुम नहीं जानते, ये मिस्टर सिंघानिया की नाजायज औलाद है। ये यहां से दूर रहती है, अब तक नहीं आई तो आज यहां क्या करने आई है? ये है इशिका सिंघानिया, जिसकी पहचान एक अमीर आदमी को नाजायज बेटी की है और अब एक अनजान आदमी की पत्नी के तौर पर।